على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. من الآخر، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تو یہ آپ نے پوسٹ کیا ہے، جزاکم اللہ خیر، لیکن اس کو اسی طرح فارمیٹ کر کے پوسٹ کر سکتے ہیں تاکہ ذرا پڑھا جا سکے. کیسے کریں گے اس کو؟ آپ واٹس ایپ سے اگر آپ کاپی کر لیں کسی ٹیکسٹ فائل میں، پھر وہاں پہ اس کو بس انٹر کر دیں جگہ جہاں پہ انٹر ہونا چاہیے. بہت شکریہ. اچھا، تو جیسے کہ عمومی طور پر ہم ہر کلاس سے پہلے ایک سمری کر لیتے ہیں ابتدا سے، تو آج بھی اسی طرح سے شروع کرتے ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو سورۃ النساء کی ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، اور اس کی ریزنز بھی آپ کو شروع میں بتا دیے تھے. ویسے تو ایک بہت بڑا ریزن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہی ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں، جب ان کی خلافت کا زمانہ تھا، تو اہل کوفہ کے نام اپنے ایک فرمان میں تحریر فرمایا تھا کہ علم النساء اکم سورۃ النور، کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو. اس کی ضرورت محسوس کری تھی اس زمانے میں، تو اس زمانے کے اندر تو اس کی ضرورت اور بھی زیادہ نظر آتی ہے. تو چونکہ یہ کلاس خواتین کے لیے خصوصاً ہے اور مردوں کے لیے بھی عموماً ہے، جو مرد اس ٹائم کے اوپر کلاس لے سکیں تو ان کے لیے بھی ایک اویلیبلٹی ہے اس کی، تو اس وجہ سے اس میں ہم خصوصاً سورہ نور اور کافی تفصیل کے ساتھ سورہ نور کی تفسیر پڑھ رہے ہیں. اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر جو شرم و حیا سے متعلق احکامات ہیں وہ نازل فرمائے، اور اس کو وائیولیٹ کرنے سے جس گناہ کا انسان مرتکب ہوتا ہے، جس کو کہ زنا کہتے ہیں انگریزی میں، اس کو ایڈلٹری یا فورنیکیشن کہتے ہیں، تو اس کی پھر قباحت کو سزاؤں کے ذریعے سے ثابت کیا، ہمارے سامنے کھول کے بیان کیا کہ دنیا میں بھی اس کی بڑی شدید سزا ہے، دوسرے گناہوں کے مقابلے میں زیادہ اس کے اندر تکلیف بھی ہے اور ذلت اور رسوائی بھی ہے. اس لیے کہ اگر قتل کی سزا کو دیکھا جائے تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے کہ قاتل کو قتل کر دیا جائے، اور قاتل کو قتل جس طرح سے کیا جاتا ہے تو وہ اتنا چشم زدن میں جو جلاد ہوتا ہے وہ اس کی گردن اڑاتا ہے کہ فزیکل تکلیف جو ہے وہ اس کو ہو ہی نہیں سکتی اتنے کم وقت کے اندر. اور اسی طریقے سے ہاتھ کاٹنے والے بھی جو ہے معاملہ، تو اس کے اندر بھی ہاتھ کاٹنا جو ہوتا ہے تو اس سے فزیکل تکلیف ایکچولی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کو مزید جو ہے وہ ڈاکٹرز بھی کنفرم کر سکتے ہیں کہ ہاتھ جب کاٹا جاتا ہے نا تو اس سے جو ہے بظاہر دیکھنے میں تو وہ بہت ہی یعنی ایسا لگتا ہے کہ اس شخص کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، لیکن یہ جس طریقے سے یعنی اس باڈی پارٹ کو جلدی سے کاٹا جاتا ہے تو اس سے نا جو ہماری باڈی کے اندر ایک نروس سسٹم ہے، نروز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، نروس جو ہے نا وہ اصل میں پین کو ہمارے برین تک پہنچاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام رکھا ہے کہ اگر کسی جگہ کے اندر کوئی بہت بڑی یعنی وہ ہو جائے نا انجری ہو جائے، ٹھیک ہے، ایک بہت بڑی انجری ہو جائے، بہت زیادہ یعنی بڑے تعداد میں نروز متاثر ہو جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہاتھ کاٹیں گے تو وہ ہاتھ میں تو بے انتہا نروز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جب متاثر ہوتی ہیں نا تو وہ پورا کا پورا سسٹم اس جگہ کا سسپینڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، نروز کا جو فنکشن ہوتا ہے نا سگنلز برین تک پرووائڈ کرنے کا، تو وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے. تو ایسے نا پھر اس شخص کو تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی، ठीक है, बल्कि उसको वो जो अगर चीखता चिल्लाता भी है ना, तो वो तकलीफ की वजह से चीख चिल्ला नहीं कर रहा होता, बल्कि अपने इस हाथ की कैफियत को देख करके चीख चिल्ला कर रहा होता है, खून को देख करके, गोश्त को देख करके, उसके ऊपर एक हैबत तारी होती है। ठीक है, उसी तरह दूसरे लोग जो देख रहे होते हैं ना, उनको इसकी इसको देख करके हैबत तारी होती है। फिजिकल तकलीफ वाला यहाँ पे मामला नहीं होता, लेकिन जिना की सजा एक ऐसी सजा है कि जो दुर्रे मारे जाते हैं तो उससे जिल्द के ऊपर तकलीफ होती है, बिकॉज जिल्द के ऊपर ही जो है ना वो इंसान की नर्व्स होती हैं, और इंसान के जो 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 पेन के रिसेप्टिकल्स होते हैं वो जिल्द के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो जिल्द से उसकी तकलीफ जो होती है वो ब्रेन के अंदर पहुंच रही होती है, तो उसको शदीद अजियत हो रही होती है। उसी तरीके से जब उसको पत्थर लग रहे होते हैं तो वो मरा तो नहीं होता ना, जिंदा होता है, और पत्थर का मामला जो है वो तो एक यानी एक कंटिन्यूस फेल है जो कि पता नहीं कितनी देर तक जारी रहता है। तो उससे इंसान को शदीद तकलीफ होती है, फिजिकल तकलीफ होती है, और उसके ऊपर मजीद जिल्लत और रुसवाई जो है लोगों के सामने होने की वजह से भी होती है। तो अल्लाह ताला ने इस तरीके से इस जिना को बहुत ज्यादा यानी काबिले सजा और काबिले नफरत किस्म का मर्ज यानी गुनाह बना करके हमारे सामने पेश किया। ये एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर चूंकि दूसरे गुनाहों जुर्मों की वजह से एक डिफरेंट नौइयत होती है, इसकी क्या नौइयत इसकी डिफरेंट होती है दूसरे यानी जुर्मों के मुकाबले में, आपको बताया था क्लास में कि दूसरे जो जुर्म होते हैं उनमें एक साइड जो होती है वो जालिम होती है और दूसरी साइड मजलूम होती है। दूसरी साइड चाहती नहीं है कि उसके साथ जो है वो ये मामला किया जाए, जैसे चोरी का मामला, डाके का मामला, जुल्म का मामला, झूठ का मामला, राइट। एक बंदा झूठ बोलता है तो जिससे वो झूठ बोल रहा होता है वो कोई पसंद को थोड़ी कर रहा होता है कि मेरे साथ झूठ बोला जाए, राइट। लेकिन जिना एक ऐसा जुर्म है कि जिसके अंदर म्यूचुअल कंसेंट होती है, बाहिमी रजामंदी, दोनों पार्टियां राजी होती हैं। इस वजह से ना ये एक डिफरेंट नौइयत का गुनाह है। आम आदमी जो है वो इस वजह से इसको जो है वो इतना बुरा नहीं समझता। ठीक है कि भाई जब जो हमारे उर्दू जुबान में मशहूर है कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, तो कहते हैं कि जी तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है जब ये दोनों माशाल्लाह दोस्ती का ताल्लुक है, ये है वो है, सब इस किस्म की बातें करके फिर इसकी जो है ना वो जो गंदी बात गंदगी है उस गंदगी को हमारे जहन में शैतान कम करता है। फिर उसके बाद हमने यानी ये भी बात करी थी कि अल्लाह ताला ने फितरत इंसान की बनाई है, किसी की फितरत के अंदर गैरत ज्यादा रखी है, किसी की फितरत में हया ज्यादा रखी है। तो मर्द की फितरत में अल्लाह ने गैरत ज्यादा रखी है और हया जो है वो गैरत के मुकाबले में कम रखी है। ठीक है, उसी तरीके से औरत के अंदर अल्लाह ताला ने हया ज्यादा रखी है मर्द के मुकाबले में, और गैरत जो है वो मर्द के मुकाबले में यानी हया के मुकाबले में गैरत उसके अंदर कम रखी है। ठीक है, तो ये इस वजह से अल्लाह ताला ने जहां चोरी का मामला जिक्र किया उसकी सजा तो मर्द का जिक्र पहले औरत का जिक्र बाद में, और जहां पर इस गुनाह की सजा का जिक्र किया तो वहां औरत का जिक्र पहले मर्द का जिक्र बाद में। फिर उसके बाद हमने एक अहम बात जो अकीदे से खुसूसन ताल्लुक रखती है वो ये डिस्कस करी थी कि जिना की सजा कुरान के अंदर सिर्फ 80 कोड़े मारना है, तो फिर ये संसारी की सजा कहाँ से आ गई। तो उसके तहत हमने आपको बताया था कि वही जो है वो सिर्फ कुरान के अल्फाज नहीं होते हैं बल्कि नबी अलैहिस्सलाम की जो हदीसें हैं, जो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो भी वही है। ठीक है, तो उसको वही गैर मतलू कहा जाता है और कुरान को वही मतलू कहा जाता है। सिर्फ ये फर्क है इन दोनों के दरमियान, वरना दोनों वही हैं। और एक अकल की सिंपल बात सोचने की भी ये है कि जो कुरान हमें मिला वो कहाँ से मिला? कोई अल्लाह ताला ने ऊपर से कोई किताब तो नहीं नाजिल फरमाई ना, कोई फरिश्ते तो नहीं आए ऊपर से कि जी उन्होंने आकर के जो उस जमाने के लोग थे उनमें पैम्फलेट्स बांट दिए, सहीफे बांट दिए, राइट। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ ना। कुरान कहाँ से आया? कुरान नबी अलैहिस्सलाम के जरिए से हमें मिला। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये अल्फाज जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ ये अल्लाह के कुरान के अल्फाज हैं, और दूसरे जो मैं अल्फाज तुम्हें कह रहा हूँ ये कुरान के अल्फाज नहीं है। ठीक है, तो यही फर्क था ना दोनों के अंदर। तो सारा का सारा हमारे पास नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से पहुंचा, और इसके बाद अगला दर्जा किया कि नबी अलैहिस्सलाम से जो हमें पहुंचा तो वो भी कोई नबी अलैहिस्सलाम ने खुद से किसी कागज के ऊपर लिख दिया होता, किसी दरख्त की छाल पर लिख दिया होता, किसी प्रिंटिंग प्रेस में जाकर के उसको प्रिंट करवा दिया होता और फिर लोगों में बांट दिया होता, ऐसा तो नहीं हुआ ना। बल्कि क्या फरमाया, क्या किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा कराम को ये कुरान सुनाया और सहाबा कराम ने उसको नोट भी किया और सहाबा कराम ने अगली जनरेशन को ये सुनाया भी। तो इसका वास्ता जो कुरान का हमारे पास है वो वास्ता कौन है? नबी अलैहिस्सलाम है और सहाबा कराम है। ठीक है, सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं है बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड सहाबा कराम, ठीक है। फिर सहाबा कराम ने लिखना भी शुरू किया था, ठीक है, लेकिन लिखी हुई भी जो चीजें थी वो भी सहाबा के पास ही महफूज थी। वो भी ये नहीं था कि लिखी हुई चीज को फिर जो है वो मीडिया में प्रिंट करवा दिया, अखबारात में शाया करवा दिया और लोगों में बांट दिया, राइट। तो कुरान की जो सोर्स हमारे पास है वो सहाबा कराम प्लस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है। तो इनमें से आप दोनों को साथ, यानी आपको इनके ऊपर एतमाद, ठीक है, इनके ऊपर एतमाद है कि जिसकी वजह से हम इस दीन के ऊपर यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं इस कुरान के ऊपर, राइट। और अगर इनके ऊपर से एतमाद हमारा खराब हो जाएगा तो फिर तो सारी की सारी फाउंडेशन ही खराब हो गई ना, पूरे के पूरे दीन की फाउंडेशन ही हिल जाएगी। इस वजह से रजम जो है वो सुन्नत मुतवातिरा से साबित है, राइट। और अगर इसका कोई इनकार करता है तो वो काफिर हो जाता है। कोई कहे आपसे आकर के कि जी रजम तो कुरान के अंदर नहीं है, कहाँ है, जरा मुझे दिखाओ, तो आप उसका जवाब नहीं दे सकेंगी, इसलिए कि कुरान में तो रजम है ही नहीं। तो फिर क्या जवाब देंगी कि भाई पहली बात तो ये कि ये सुन्नत मुतवातिरा से साबित है, ठीक है। और सुन्नत मुतवातिरा क्या होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी तादाद में लोगों ने इस बात को सुना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फेल को लोगों ने देखा, ठीक है, और फिर आगे ट्रांसमिट किया। तो इतनी बड़ी तादाद जो होती है लोगों की, तो उसमें इहतमाल ही नहीं होता मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन का, ठीक, उसको सुन्नत मुतवातिरा कहते हैं। तो एक तो जवाब ये हो जाएगा, और दूसरा जवाब इससे भी ज्यादा बढ़ करके वो ये है कि ये जो कुरान है ना, जिसको के जो मुल्हिदीन है ना, जो लोगों को कंफ्यूज करते हैं और उनका दीन खराब करने की कोशिश करते हैं, तो वो उनको धोखे देकर के क्या कहते हैं कि जी कुरान जो है ना सिर्फ ये महफूज है और बाकी चीजें महफूज नहीं है, क्योंकि कुरान में है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफिज़ून। तो लोग अवाम जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ वाकई सही कह रहे हैं बात। तो उनको ये जवाब दिया जाएगा कि ये जो कुरान है ना, ये भी सुन्नत मुतवातरा है, ये कुरान भी तो सुन्नत मुतवातरा ही है ना, क्योंकि ये कुरान की जो आयात है ये क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई और बड़ी तादाद में सहाबा किराम ने उनको सुना और आगे ट्रांसमिट किया, इसी को तो सुन्नत मुतवातरा कहते हैं। तो सिर्फ हदीस में सुन्नत मुतवातरा नहीं है बल्कि कुरान भी सुन्नत मुतवातरा है, ठीक है। तो सुन्नत मुतवातरा का जो जो मुनकर होता है वो चाहे किसी हदीस जो सुन्नत मुतवातरा से साबित है उसका मुनकर हो, चाहे वो कुरान की किसी आयत का मुनकर हो, वो काफिर हो जाता है। तो अपने ईमान की हिफाजत के लिए हमें इन चीजों की हकीकत को पता होना चाहिए, ताकि कोई मुल्हिद, कोई शरारती किस्म का इंसान आकर के हमें, हमारी औलादों को ईमान से महरूम ना कर जाए। फिर पर्दा के बारे में बातें और भी आयात के तहत हमने करी थी कि जो यानी जिना एक ऐसा जुर्म है कि जो इस जुर्म को करता है तो उसका मिजाज खराब हो जाता है, उसका यानी उसकी जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना, जो उसके मिजाज के टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जैसे कि मुंह में टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना, जुबान, उसके टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से आपको खाने वाली चीज का जायका पता लगता है। अगर आपके टेस्ट बर्ड्स खराब हो जाए ना, तो आपको या तो उस खाने वाली चीज का जायका बिल्कुल पता नहीं लगेगा, या मीठी चीज आपको कड़वी लगेगी, कड़वी चीज आपको मीठी लगेगी। ये कहते हैं टेस्ट बर्ड्स का खराब हो जाना। उसी तरीके इंसान की नफ्सियात के अंदर जो है ना, वो टेस्ट बर्ड्स होती हैं, जब वो टेस्ट बर्ड्स खराब हो जाती हैं इंसान की नफ्सियात की, तो उसको नेकी बुरी लगती है और बुराई अच्छी लगती है। तो ऐसे शख्स को जिसको के जिना की लत पड़ जाए या इस गुनाह के अंदर इन्वॉल्व हो जाए, तो उसको फिर निकाह बुरा लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि निकाह के अंदर जिम्मेदारी होती है, निकाह के अंदर पाबंदियां होती हैं, ठीक है। आपको एक औरत की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, और औरत को मर्द के साथ जो है वो अपनी जिंदगी बंद के गुजारनी होती है, और उसकी बात की यानी उसकी बात को इंपॉर्टेंस देनी होती है अपनी जिंदगी के अंदर। तो इस वजह से जिस औरत को जिना का जुर्म लग जाए, गुना लग जाए, और जिस मर्द को जिना का गुना लग जाए, उसको फिर शादीशुदा जिंदगी बहुत बुरी लगती है। इसी वजह से ये जो उमूमन खुसूसन नहीं, उमूमन ये जो तलाक बहुत ज्यादा आम हो गई है जमाने के अंदर, तो इसका डायरेक्ट कॉज क्या है, इसकी डायरेक्ट कॉज जो है ना, ये सो कॉल्ड आजादी निस्वा, ये सो कॉल्ड जो हुकूक निस्वा वगैरह की जो बातें करते हैं काफिर, और उन्होंने हम मुसलमानों को भी बेवकूफ बना दिया इसके अंदर। तो इसकी वजह से जो एक आजादी है, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो जो इंडिपेंडेंस आई है ना माशरे के अंदर, तो इस वजह से फिर बंद करके निकाह में रहना बहुत मुश्किल काम हो गया है। हर कोई आजादी चाहता है, मर्द भी चाहता है कि क्या मुसीबत है मुझे इनकी इनकी जिम्मेदारियां उठानी पड़ रही हैं, ठीक है। और ये एक चीज जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज में, जैसे कि कल एक मिसाल साहब को बताया था कि व्हेन यू कैन फाइंड मिल्क इन द मार्केट व्हाई कीप अ काउ इन द हाउस, ठीक है, तो वो औरत को जो है वो एक एक गाय की तरह से कंसिडर करता है। ठीक है, तो ये तो इंतहा जो है वो मगरबी माशरे के अंदर पहुंच चुकी, और मशरकी माशरे में अभी ये इंतहा नहीं पहुंची, मशरकी माशरे में इंतहा जो है वो औरत की हद तक पहुंची है खाली। कि औरत जो है वो बंद करके रहना, वो बात मानना, वो जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रहना, अपने करियर को क्यों मैं कॉम्प्रोमाइज करूं, मैंने इतनी तालीम हासिल करी है तो मैं क्यों ना जो है वो अपना करियर बनाऊं, मैं क्यों ना इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारूं। अब ये जो है वो मुझे क्यों कहता है कि इधर जाओ, इधर नहीं जाओ, इधर नहीं जाओ, इधर जाओ या इधर नहीं जाओ, और ऐसे करो और ऐसे ना करो। भाई मैं खुद कमाती हूँ, मैं खुद खाती हूँ, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, सो वाई कीप रिस्ट्रिक्टेड इन दिस रिलेशनशिप। ठीक है, तो थोड़े दिन तक तो चलता रहता है मामला, बिल आखिर कहती है बस मुझे आजादी चाहिए, फिर वो खुला फाइल कर देती है, और बड़ी आसानी से उसको आज के मुआशरे के अंदर और भी ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। बाप सपोर्ट करता है, सबसे बढ़कर कौन सपोर्ट करता है कि हाँ तुम्हें उसकी मानने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तुम छोड़ करके आ जाओ मेरे पास। तो इस तरीके से तलाक के रेशियोज जो है वो मुसलमान मुआशरे में, जो गैर मुस्लिम मुआशरे हैं वहां तो निकाह का ही मामला खत्म हो गया ना, मुसलमान मुआशरे में निकाह तो हो रहा है लेकिन निकाह से निकलने के वाकयात जो है वो अनगिनत जो है वो होने शुरू हो गए। तो इसकी वजह जो है वो यही बनता है कि मुआशरे के अंदर इस तरीके से इन चीजों को प्रमोट किया जाता है कि फिर इंसान को निकाह बुरा लगना शुरू हो जाता है पाबंदियों की वजह से, और जिना अच्छा लगना शुरू हो जाता है क्योंकि उसके अंदर किसी किस्म की कोई पाबंदियां नहीं होती हैं। जैसे आपको बताया था कि एक जो उस लड़की का पता लगा जिसके जो जॉब के ऊपर साथ होती थी, तो पता लगा कि पांचवा बॉयफ्रेंड चल रहा है उसका, पांचवा बॉयफ्रेंड। और आज हमारे अपने मुआशरे में, हमारे अपने जो ज्यादा जो 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 जरा यानी थोड़े से लोअर मिडिल क्लास तबका है, तो वहां पर तो एक एक गर्लफ्रेंड, जैसे कि किसी बच्ची ने कल सवाल भी किया था कि हर बच्चे और हर बच्ची के गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है पाकिस्तान के स्कूल्स के अंदर, पाकिस्तान के कॉलेजेस के अंदर। और जहां पर जरा ज्यादा अमारत आ चुकी है, जरा ज्यादा वहां पर पैसे और माल का रेल पेल है, तो वहां पर भी यही हाल है कि लड़कियों के बॉयफ्रेंड जो है वो चार चार पांच पांच होते हैं, फिर उसको भी चेंज करते रहते हैं, यानी मुस्तकिल का एक 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 प्रोसेस चल रहा होता है। और इस चीज को बहुत जो है वो ग्लैमराइज करके पेश किया जाता है मीडिया के अंदर, बहुत ग्लैमराइज किया जाता है। तो ये ना इस किस्म का गुनाह है कि इससे इंसान की टेस्ट बड्स खराब हो जाते हैं, चाहे वो नजरों का गुनाह क्यों, नजरों का जिना क्यों ना हो, लेकिन हर कोई जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन निगाहों के गुनाह में तो इन्वॉल्व होते हैं। और इसके अलावा जो निगाहों से पढ़ते हैं इस किस्म के वाकयात को, इस किस्म के नॉवेल्स को, डाइजेस्टों को, तो उनके साथ भी यही मामला होता है कि निगाह बुरा लगना शुरू हो जाता है और जिना अच्छा लगना शुरू हो जाता है। फिर पाक दामनी की अल्लाह ताला की निगाहों में क्या कदर है कि जो पाक दामन औरत होती है और जो पाक दामन मर्द होता है उसकी पाक दामनी अल्लाह के यहाँ इतनी ज्यादा अहमियत रखती है, इतनी अल्लाह उसकी कदरदानी करते हैं कि अगर कोई इंसान उसके ऊपर तोहमत लगाता है तो अल्लाह ताला उसके उसको हद तजफ जारी करवाते हैं उसके ऊपर कि 80 कोड़े तुम्हें लगेंगे, तुम रुसवा होगे और तुम्हारी शहादत कबूल नहीं की जाएगी। और इसी तरीके से ये जो गुनाह, ये जो जुर्म है जिना का, तो इसके लिए चेक्स एंड बैलेंसेस भी अल्लाह ताला ने यानी ऐसे रखे हैं कि जो कि किसी और जुर्म के नहीं रखे। दूसरे जराइम के लिए 2 गवाहों की जरूरत होती है और यहाँ पर 4 गवाहों की जरूरत होती है। तो चेक्स एंड बैलेंसेस भी अल्लाह ताला ने बेशुमार रखे हैं इसके, यानी ऐसे रखे हैं कि जो कि किसी और मामले के अंदर नहीं है। इसके बाद हमने लियान का मामला पढ़ा था, और लियान के मामले की भी समरी कल हमने करी थी कि अल्लाह ताला के ऊपर अपने मामला को छोड़ देना, अगरचे आपके साथ कोई ऐसी अजियत, किसी ने बुरा मामला किया हो जिसका कि आप दुनिया में बदला नहीं ले सकते हैं, तो बड़ों के हुक्म के ऊपर उसको अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ देना चाहिए और मामला को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए, वरना आपका अपना भी नुकसान होता है और मुआशरे के अंदर भी फसाद मजीद फैलता है। फिर जो वाकया इफ्क है, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ऊपर तोहमत लगाने वाला वाकया, तो उसकी तफसीरात हमने कल पढ़ी थी, और उसमें हम जहाँ पर थे वहीं से हम शुरू करते हैं। उसकी समरी थोड़ी सी इतनी थी जो कि यानी कल हमने पढ़ा था, उसमें हमने चंद बातें जो हिकमत वाली बातें हमारे लिए इस वाकये के अंदर अल्लाह तआला ने रखी हैं, तो उनमें जैसे एक बात ये हमने डिस्कस करी थी कि एक जो मर्द होता है तो मर्द का रिएक्शन का अंदाज बिल्कुल डिफरेंट होता है और औरत का रिएक्शन का अंदाज डिफरेंट होता है। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब परेशान हुए तो वो एक आइसोलेशन मोड में चले गए अपने घर वालों से, उन्होंने घर वालों से वो बातें डिस्कस नहीं करी जैसे कि आम हालात में वो डिस्कस करते थे। तो औरतों को फिर इसके ऊपर, यानी जब ऐसा मामला हो जाए तो अकल समझ से काम लेना चाहिए, और इस मामले में बजाय इसके कि यानी लड़ाई झगड़ा क्रिएट कर देने के, ये देखना चाहिए कि क्या वजह है कि मेरा शौहर आजकल मुझसे उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है या खामोश खामोश सा लग रहा है। तो उसकी अगर कोई प्रॉब्लम मेरी तरफ से है तो मैं उसको दूर करने की कोशिश करूं, और अगर बाहर से कोई उसको प्रॉब्लम है तो मैं इसमें उसको सपोर्ट करूं, कोई मीठे बोल बोल दूं, कोई अच्छे बोल बोल दूं, ताकि उसकी ये परेशानी कम से कम हल हो जाए। और यकीन करें कि बीवी की तरफ से जब चंद बोल शौहर सुन लेता है ना, तो चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत में वो मुब्तला हो तो उसकी मुसीबत बहुत हद तक दूर हो जाती है। बहुत, यानी एक इतना बड़ा सपोर्ट होता है बीवी का मर्द को कि इससे बड़ा सपोर्ट इस दुनिया में कोई नहीं होता। कैसे ये बात कह रहा हूँ, एक बहुत बड़ी दलील से ये बात कह रहा हूँ। आप में से चंद जिन्होंने के आलमा कोर्स में क्लासेस ली हैं, उन्होंने सुना होगा कि जो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर, ठीक है, सबसे बेहतरीन कौन सी हमारे पास एग्जाम्पल होती है, नबी अलैहिस्सलाम की, उससे बड़ी एग्जाम्पल कोई है ही नहीं है इंसानों के अंदर। तो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जब इंतहाई दर्जे का एक मुश्किल वाकया पड़ा था, सबसे पहला जब वही आप के ऊपर नाजिल हुई और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ना आए और उन्होंने आप को यानी बहुत सख्ती से दबोचा भी, भींचा भी, राइट, और इतना बड़ा बार जो है वो आपके ऊपर डाल दिया, ठीक है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के सामने उस वक्त काबतुल्ला मौजूद था, अल्लाह का घर मौजूद था। ये गारे हिरा में वाकया हुआ ना, राइट, और गारे हिरा की खसूसियत क्या थी कि वहां से अल्लाह का घर नजर आता था। मक्का मुकरमा में थे नबी अलैहिस्सलाम, तो उस जब ये बोझ आप के ऊपर पड़ा तो आप उस पहाड़ से, जबले सौर से उतर करके, ये जबले नूर से उतर करके अल्लाह के घर नहीं गए, राइट, काबतुल्ला नहीं गए, बल्कि कहाँ गए, अपनी बीवी के पास गए, राइट, अपनी बीवी के पास गए, और बीवी ने आगे से इतने अच्छे अच्छे कलिमात कहे कि नबी अलैहिस्सलाम की ये परेशानी दूर हो गई, ठीक है ना। तो बीवी अगर इस मामले के अंदर जरा सी अकल से काम ले तो शौहर की बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां जो है वो दूर हो जाती हैं। इसके बाद फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो अल्लाह ताला ने शदीद यानी मना फरमाया है कि जो सुनी सुनाई बातें हैं उनको आगे नहीं कर देना चाहिए, तो ये वाली गलती जो हम आजकल खुसूसन सोशल मीडिया, व्हाट्सएप वगैरह की वजह से कर रहे हैं, तो इससे हमें तौबा करनी चाहिए। इससे कोई फायदा नहीं होता, बल्कि हम अपने आप के ऊपर बहुत बड़े बड़े गुनाहों के अंबार डाल रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो हमें अपने हाथों को कंट्रोल में रखना चाहिए। हमारे हाथों के अंदर ना ऐसा लगता है कि जैसे खुजली होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, जब कोई ऐसा मैसेज आता है, चाहे वो नेकी का मैसेज हो, चाहे वो तफरी का मैसेज हो, चाहे जैसा भी हो, जो कि हमें जो है वो किसी वजह से अच्छा लगता है। अब हम जिस ग्रुप के अंदर सब्सक्राइब होते हैं ना व्हाट्सएप के, ठीक है, तो अब हमारे हाथों में खुजली होनी शुरू हो जाती है कि अब मैं किसी तरीके से भेजूं उस ग्रुप के ऊपर उसको, और बड़ी मुश्किल होता है लोगों को अपने आप को होल्ड करना। और अगर जो है वो कोई सख्तियां पाबंदियां ना लगाई जाएं एडमिनिस्ट्रेटर्स की तरफ से, तो फिर ग्रुप्स के ऊपर जो है वो लोग हर वक्त कुछ ना कुछ भेजना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हमारा यही काम रह गया कि हम हर वक्त आपकी मैसेजेस पढ़ते रहे, हर वक्त आपकी तरफ से जो आई वी वीडियोज हैं, आपके जो ऑडियोज हैं, और आपके जो जो सो कॉल्ड जो आपने अपनी तरफ से दीनी पैगाम समझे होते हैं तो उन्हीं को पढ़ते रहे हर वक्त, और कोई काम नहीं इंसान को दुनिया के अंदर, ठीक है। खाली फोन ही से हर वक्त कनेक्टेड रहे, फोन से कनेक्टेड रहने की वजह से हर वक्त जो है वो घरों के अंदर झगड़े क्रिएट हो जाते हैं, इंसानों के काम खराब हो जाते हैं, जॉब के ऊपर उनकी परफॉर्मेंस जो होती है खराब हो जाती है, घर के अंदर उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, और हम जो है वो इस बहाने जो है वो हर वक्त जो है वो लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेजते रहते हैं। तो काम के लिए बेशक उसको इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला की एक नेमत समझ करके इसकी कदरदानी करें, इसको दीन को अपने दीन की समझ, दीन की के इल्म को प्रॉपर तरीके से बढ़ाने के लिए एज अ टूल के इस्तेमाल करें। ये नहीं कि हर वक्त कुछ जारी और आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो इससे जो है वो हम गुनाहों के मुर्तकिब भी हो जाते हैं और अपना वक्त जाया करने के भी मुर्तकिब होते हैं। फिर इसके बाद जो किताब के अंदर हम मज़ामीन पढ़ रहे थे, तो उसमें हम शुरू करते हैं कि अपने घर वालों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिफेंड किया। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने कल डिस्कस किया था कि अपने घर वालों को डिफेंड करना चाहिए। फिर पेज नंबर 380 के ऊपर आए, 380 पेज के ऊपर जो ये जो आयत थी, क्योंकि इससे पहले हम ये एक शुबा और उसका जवाब तो कल पढ़ चुके थे ना, पेज नंबर 379 के ऊपर, या अगर किसी को ये शुबा हो कि जिसके जैसे किसी वाकये का सिद्क बगैर दलील के मालूम नहीं होता, इसलिए उसका जुबान से निकलना, हाँ, उसको जुबान से निकालना और चर्चा करना नाजायज करार पाया। इसी तरह किसी कलाम का काजिब होना भी तो बगैर दलील के साबित नहीं होता कि उसको बोहतान अजीम कह दिया जाए। यानी कोई शख्स आपके पास आ रहा है कि हाँ भाई मैंने सुना है कि उन्होंने ये हरकत करी है, इस मर्द ने या इस औरत ने ये हरकत करी है, जरा होल्ड कीजिएगा प्लीज। अच्छा इन दिस केस, क्या किसी ने सवाल लिखा है कि इन दिस केस दैट ही इज नॉट श्योर हिज एक्टिविटी विल क्रिएट बदनामी एंड बदगुमानी फॉर दिस पर्सन, सो व्हाई इज इट नॉट ए सिन? आप इन सवाल में समझ नहीं सकता। क्या मतलब? अच्छा, आप जरा इसको रिवर्ट कर सकते हैं प्लीज सर। ठीक है। अच्छा, ये जो खवातीन का लिंक है ये फुल हो चुका है, तो मर्दों का लिंक जो था, जो कि अब हमने एक्चुअली दोनों प्लेस सेम ही कर दिया है, कि जहाँ पे भी आपको जगह मिले वहाँ पे आ सकते हैं। तो अगर आपको कोई जानने वाला एंट्रोनी कोशिश कर रहा है तो उनको बता दें कि वो दूसरे लिंक पर भी आ सकते हैं। इसी वजह से कहा था कि व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसको सब लोग ज्वाइन कर लें, ताकि वहाँ पे इस तरह की अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है, चलें। तो एक शुबा और उसका जवाब, ये गालिबन हमने कल पढ़ा था लेकिन इसको रिपीट कर लेते हैं। NH आफ्ताब, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। अच्छा, 1 मिनट। अच्छा, अगर सिर्फ आपको आ रही है तो आपका लोकल मसला होगा, और अगर सबको आ रही है तो फिर मेरा लोकल मसला होगा। तो एक शुबा उसके जवाब का टॉपिक मेरा देख लेते हैं फिर, कि अगर किसी को ये शुबा हो कि किसी वाकये का सिर्फ बगैर दलील के मालूम नहीं होता, इसलिए उसका जुबान से निकालना और चर्चा करना नाजायज करार पाया। इसी तरह किसी कलाम का काजिब होना भी तो बगैर यानी झूठा होना भी तो बगैर दलील के साबित नहीं होता कि उसको बोहतान अजीम कह दिया जाए। जवाब यह है कि हर मुसलमान को गुनाहों से पाक समझना असल असल शरई है, यानी शरीयत में असल यह है कि हर मुसलमान जो है वो गुनाहों से पाक है, जिसको हम कहते हैं ना बाई डिफॉल्ट। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हर मुसलमान को गुनाहों से पाक समझा जाएगा जो दलील से साबित है। इसके खिलाफ जो बात बगैर दलील के कही जाए उसको झूठा समझने के लिए किसी और दलील की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना काफी है कि एक मोमिन मुसलमान पर बगैर किसी दलील शरई के इल्जाम लगाया गया है, लिहाजा ये बोहतान है। ठीक है, यानी ये जो गुनाह है ये वाला, ये इस खास आबरू वाला गुनाह होता है। ठीक है, इज्जत और आबरू वाला गुनाह जिसको जिना कहते हैं। तो इस मामले में अल्लाह ताला ने 4 शरी गवाहों की शर्त लगाई है, तो इसके बगैर अगर कोई इल्जाम लगाएगा ना, तो उस इल्जाम लगाने वाले को आप झूठा समझेंगे। वो आपके नजदीक भी झूठा होना जरूरी है और अल्लाह के नजदीक भी झूठा वो होता है, जैसे कि कुरान की आयत में अल्लाह ताला ने सनातन फरमा दिया था कि इंदुल्लाहि हुमुल काज़िबून। इसके बारे में कल हमने पढ़ लिया था। तो इस आयत में पेज नंबर 380 पे पढ़ रहा हूँ कि इस आयत, ये अच्छा ये जो अगली आयत है, इन लदीन युहिब्बून अन तशी अल्फाहिशतु फिल लदीन आमनु लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। इस आयत में, अच्छा इस आयत का तर्जुमा क्या बनता है, कि बेशक वो लोग जो कि पसंद करते हैं कि फोहश बातों को ईमान वालों के दरमियान फैलाएं, नशर व अशात करें, उनकी तशी अल्फाहिशा नशर अशात करें, तो उनके लिए एक दर्दनाक अजाब है दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो इसकी तफसीर में लिखते हैं कि शायद में उन लोगों की मजम्मत और उन पर दुनिया और आखिरत के अजाब की वईद है जिन्होंने इस तोहमत में किसी तरह का हिस्सा लिया। इस आयत में ये बात ज्यादा है कि जो लोग ऐसी खबरें मशहूर करते हैं गोया वो ये चाहते हैं कि मुसलमानों में बदकारी और फवाहिश फैल जाएं। ठीक है, इम्प्लिसिटली ये नीयत हो उनकी या एक्सप्लिसिटली ये नीयत हो, ठीक है। इम्प्लिसिटली नियत का मतलब ये होता है कि आपने खास कर ये नियत नहीं करी, बल्कि जिस तरह हम लोग अमूमन करते हैं ना कि ऐसे ही थोड़ा सा तफरी की खातिर, ठीक है, थोड़ा सा जो है वो दिल लगी की खातिर इधर की बात उधर लगा दी और उसके बारे में बात कर ली अपने ड्राइंग रूम में बैठे और चंद खवातीन बैठी हैं, चंद मर्द बैठे हैं और किसी के इज्जत के बारे में बातें करनी शुरू कर दी। तो हम जो है ना कोई ऐसा एक्सप्लिसिट नियत नहीं कर रहे होते कि मुसलमान माशरे के अंदर फहाशी फैल जाए, तो इसको कहते हैं इम्प्लिसिट नियत करना, ठीक है। तो ये भी नाजायज है। और एक्सप्लिसिट नियत का कौन लोग करते हैं, एक्सप्लिसिट नियत जो है वो काफिर करते हैं या काफिरों के जो एजेंट मुसलमानों में मौजूद होते हैं वो ये नियत एक्सप्लिसिटली करते हैं कि मुसलमानों के दरमियान फहाशी और औरियानियत फैले ताकि इनका ताल्लुक अपने परवरदिगार के साथ कमजोर हो जाए। जब इनका ताल्लुक कमजोर हो जाएगा तो फिर ये हमें किसी मैदान में शिकस्त नहीं दे पाएंगे, ठीक है, ना मैदान जंग में शिकस्त दे पाएंगे ना ना जो है वो मुआशरत के मैदान में हमें शिकस्त दे पाएंगे और ये अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से वो फहाशी और औरियानियत को मुसलमान मुआशरे के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से फैलाने की कोशिश करते हैं। ये जो ट्रिक्स उन्होंने यूज करी हैं, बाकायदा फॉर्मली इन्होंने ये ट्रिक्स जो है फहाशी वाली ट्रिक्स जिसको जिसको क्या कहते हैं पोर्नोग्राफी, ठीक है, यानी औरिया तस्वीरें इस किस्म के इमेजेस जो फैलाने वाला काम है ना, ये हमने किताब यानी पढ़ा कि सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की जो अफवाज यूरोपियंस को मुकम्मल शिकस्त देने में कामयाब होती थी ना, तो उसका उन्होंने बाकायदा आपस में एक मीटिंग करके ये इस बात के ऊपर गौर किया कि आखिर ये मुसलमान जो है वो इतना ज्यादा कैसे हमारे ऊपर गालिब आ जाते हैं हालांकि तादाद में हमेशा हमसे कम होते हैं। तो उसके ऊपर बहुत गौर फिक्र करके उन्होंने एक नतीजा निकाला कि हम इनको ना किसी तरीके से इनके जहनों के अंदर से ये बातें जो ईमान वाली बातें हैं जो ये रातों को उठ करके इबादतें करते हैं दिन के अंदर जो है वो पाकबाजी की पाकदामनी की जिंदगी गुजारते हैं इसको खत्म कर देंगे ना तो फिर ये हमारे ऊपर गालिब नहीं आ सकेंगे। तो फिर उसके बाद इन्होंने बाकायदा पोर्नोग्राफी की इंडस्ट्री को स्टार्ट किया और उस जमाने में जाहिर है कैमराज नहीं होते थे, राइट, प्रिंटिंग प्रेस नहीं होते थे, तो उस जमाने में पोर्नोग्राफी इन्होंने हाथों से इमेजेस बना बना करके इंसानी बदन और उसके यानी उसको देख करके जो मुसव्विर होता है वो तो बना सकता है ना तस्वीरें, तो उन्होंने बकायदा हैंड यानी हाथों के जरिए से हाथों के इस्तेमाल से ऐसी इमेजेस बनाई और फिर मुसलमानों में फैलानी शुरू करी। और ये इस ट्रिक के अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता करके कामयाब हुए और फिर मुसलमानों को उन्होंने शिकस्त दी बाद में जा करके। तो इसमें फिर हजरत ने एक और बात देखी कि इंसिदादे फवाहिश का कुरानी निजाम और एक अहम तदबीर जिसके नजरअंदाज करने का नतीजा आजकल फवाहिश की कसरत है, ठीक है। तो इसमें वही यानी इसको मैं पूरा नहीं पढ़ता हूँ, आप मुताला कर लीजिएगा, लेकिन बात यही है कि जो आज का मीडिया है वो इस चीज को इस तरह से फैलाता है खबरों के जरिए से भी और इमेजेस के जरिए से भी कि जिसकी वजह से कि लोगों के दिलों से बेहयाई और फवाहिश की नफरत कम हो जाती है और जराइम पर इकदाम करने और शाया करने का ये मूजब हो जाती है कि लोगों के अंदर फिर ये एक हैजान पैदा होता है नफ्स के अंदर, क्योंकि अल्लाह ताला ने सिस्टम इस तरह से बनाया है कि ये जो इमेजेस और इस तरह की जो बातें होती हैं इनसे इंसान की फिजिकल बॉडी के अंदर एक रिएक्शन पैदा होता है और वो खुद भी चाहता है फिर ये वाला काम करना। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये नेचुरल प्रोसेस अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर इंसानियत की नस्ल चलाने के लिए अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा है, ठीक है। अगर ये चीज ना हो इंसानी बदन के अंदर तो औलाद पैदा ना हो, नस्ल इंसान के आगे ना चले, ठीक है। तो इसको जब शरीयत की हुदूद में रखा जाता है यानी निकाह की पाबंदी के साथ तो ये जन्नत का सबब बनता है, ठीक है। जब ये औलाद होती है तो औलाद जो है वो सिर्फ ये नहीं कि आपकी आंखों की ठंडक का सबब बनती है, आपको जो है वो अच्छा लगता है औलाद के साथ वक्त गुजारना, बल्कि ये औलाद आपके लिए सवाबे जारिया भी बनती है, आपकी नेकियों के बढ़ाने का भी सबब बनती है। जन्नत क्या मतलब कि जन्नत में आपके मुकामात को बुलंद करवाने का भी सबब बनती है ये औलाद, ठीक है। तो इसको अगर हलाल तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इतने बड़े बड़े फायदे होते हैं दुनिया के भी और आखिरत के भी, लेकिन हराम तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो है फिर जराइम के ऊपर जो अल्लाह ताला ने जिस चीज को जुर्म करार दिया है उसके ऊपर कदम उठाने का इंसान के अंदर दाइया पैदा होता है। तो इस तरह से जो कसरत यानी ये जो होता है बुराई की और बेहयाई की जो कसरत होती है तो फेले खबीस नजरों में हल्का नजर आने लगता है। तो इसके ऊपर एक बहुत अहम पॉइंट जिसके बारे में बड़ी तादाद में मुसलमान आजकल गलत फहमी का शिकार है, वो क्या है कि कहते हैं कि ये जो हमारे मुआशरे के अंदर, चाहे वो यूरोप का मुआशरा हो चाहे मुसलमान मुल्कों का मुआशरा हो, यहाँ पर जो ये जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जिसको कहते हैं, ठीक है, यानी सेक्सुअली जो लोग एक्सप्लॉयट हो जाते हैं, चाहे वो बड़े हों चाहे खसूसन आज के दौर के अंदर बच्चे हों, ठीक है, क्योंकि ये वाले वाकयात बिल्कुल यानी बहुत तेजी के साथ जो है, वो जैनब जो बच्ची थी 6 साला कसूर के अंदर जिसके साथ ये ज्यादती हुई, तो वो एक बड़ा वाकया खुल करके सामने आया, और फिर पता लगा कि पहले भी कितने सारे इस तरह के वाकयात हो चुके थे, लेकिन इतना उनको मीडिया की के अंदर वो कवरेज नहीं मिली थी। लेकिन उसके बाद जो है वो हर वाकये की कवरेज मिल रही है और मीडिया में बहुत ज्यादा आ रहे हैं कि किसी 6 साला बच्ची के साथ ये हो गया, किसी 9 साला बच्ची के साथ ये हो गया, कहीं पे कहीं का कोई वाकया आता है, हत्ता के इन्फेंट्स के साथ ऐसे वाकयात भी अखबारों के अंदर आ रहे हैं, इन्फेंट्स के साथ, बेबीज के साथ। यानी तसव्वुर करें कि क्या किस लेवल तक इंसानियत जो है वो गिर चुकी है। तो इसके रिएक्शन के तौर पे ना, चूंकि हम अल्लाह के बताए हुए उसूलों पे तो अमल करना नहीं चाहते, क्योंकि उससे तो हमारे ऊपर पाबंदियां आ जाएंगी, हम जो है वो अपनी मनमर्जी की जिंदगी गुजार नहीं सकेंगे, तो फिर ना हम अपनी अकल से जो है वो इनके सोल्यूशन सोचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक सोल्यूशन जो हमारी अपनी अकल से, अपनी अकल का असल में मतलब क्या होता है कि हम अपने नफसानी यानी जो हमारी प्रेफरेंसेस होती है ना, ख्वाहिशात की बेसिस के ऊपर, उसकी बेसिस पर हम अपनी अकल को इस्तेमाल करते हैं, और ऐसी जो अकल होती है जो कि ख्वाहिशात की वजह से गाइडेड होती है, या ख्वाहिशात से गाइडेड होती है, ख्वाहिशात से इन्फ्लुएंस्ड होती है, तो ये जो अकल होती है इसको बाहर से शैतान आइडियाज दे रहा होता है, ठीक है। बैरूनी दुश्मन कौन है? शैतान है, और अंदरूनी दुश्मन हमारा नफ्स है। तो जब हम अंदरूनी दुश्मन के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, तो हमारी अकल जो है जो फैसले करती है ना, तो वो फैसले फिर शैतान के आइडियाज भी उसके अंदर शामिल होते हैं। तो शैतान ने क्या आइडिया दिया हुआ है इस वक्त कि इसका हल ये है कि तुम बच्चों को सेक्सुअली एजुकेट करो, सेक्सुअली बच्चों को एजुकेट करो, ठीक है। तो जिनसी तालीम को अपने स्कूलों के अंदर राइज करो, अपने घरानों के अंदर इस इन बातों को तुम डिस्कस किया करो, ठीक है, और इस मौजू के ऊपर बाकायदा एक मुहिम चल रही है मैसेजेस के जरिए से और वीडियोस के जरिए से, और बाकायदा स्कूल्स के करिकुलम्स चेंज किए गए हैं, स्कूल्स के अंदर 3rd ग्रेड तक भी ऐसे बुक्स के अंदर चीजें ऐड की जा रही हैं, 3rd ग्रेड, राइट, तीसरी जमात के लेवल तक भी, कि जिसके अंदर की ये सेक्स एजुकेशन होती है कि ऐसे इंसान का बदन ये होता है, उसके अंदर ये मामलात ऐसे होते हैं, और ऐसे औलाद पैदा होती है, राइट। और जब 3rd ग्रेड से ऊपर चले जाएं तो फिर तो वो और बढ़ता चला जाता है। तो ये इनका हल है, ये शैतान का हल है कि जी नाउज बिल्ला, हल तो ये नहीं होता, ये तो हमें बर्बाद करने का एक और तरीका है बेसिकली, खाली, और उससे ज्यादा कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो इसके जरिए से वो हमें कहता है कि जी जब 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 सेक्चुअली एजुकेट हो जाएंगे ना बच्चे, तो फिर वो अपनी हिफाजत कर सकेंगे, ठीक है। क्या कहें उसको, यानी कोई अल्फाज, कोई ऐसा लफ्ज अच्छा समझ में नहीं आ रहा कि जो कि इसको एक अच्छे अंदाज में जो है वो बुरा भला कह सकें। खैर, बहुत ही घटिया किस्म की ये सोच है। ये मिसेस तारिक महमूद जो है उनको आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, एवरीवन एल्स कैन हियर, प्लीज चेक योर स्पीकर्स। अच्छा, तो ये बात बिल्कुल गलत है कि सेक्सुअल एजुकेशन के जरिए से जो है वो बच्चे अपना अपना जो है वो यानी दिफा कर सकेंगे, बल्कि इंसानी जो नेचर अल्लाह ताला ने बनाई है, वो नेचर ये है कि जब उसके सामने इस तरह की चीजें मेंशन की जाती है ना, तो वो उनको एक्ट वो चीजें फिर उसके जहन में चलनी शुरू हो जाती हैं। जो चीजें वो देखता है, जो चीजें वो सुनता है, तो वो चाहे किस भी एज का हो, वो उसके वो उसके जहन के अंदर एक एक फिल्म की तरीके से चलनी शुरू हो जाती है, फिर वो उन चीजों को ट्राई आउट भी करना चाहता है, ठीक है। तो इस वजह से जो कम एज होती है बच्चों की, तो उसमें उनको एक्सपोजर नहीं दिया जाता, ठीक है, और हम इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, हम अपने बच्चों को नहीं चाहते कि हर चीज का एक्सपोजर दें, ठीक है, लेकिन ख्वाहिशात के अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के वजह से हम जो है ना वो ना चाहते हुए भी उनको एक्सपोजर दे जाते हैं बहुत सारी चीजों का। यानी हमें बस ड्रामे देखने, हमें सीरियल्स देखने हैं, हमें जो है ना वो एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स देखने हैं, ठीक है। तो अब इस वजह से हमें टेलीविजन अपने घर के अंदर लाना है, अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है ना। अब हमें पता है कि जब टेलीविजन घर के अंदर आएगा, जब वो चलेगा, तो घर के अंदर बच्चे भी होते हैं और बच्चों ने भी उन चीजों को देखना है, बच्चों ने भी उन चीजों से एक्सपोज होना है। हालांकि अगर किसी क्लासरूम में बैठ करके अगर हमें हमसे बात की जाए ना कि क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है वो एक दूसरे इंसान को दूसरे इंसान को कत्ल करते हुए देखें, अजियत पहुंचाते हुए देखें, एक इंसान को दूसरे इंसान को धोखा देते हुए देखें, राइट, एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ जो है वो इस किस्म की बेहयाई वाले काम करते हुए देखें, तो हम जवाब देंगे कि नहीं, हम नहीं चाहते ऐसा करना। ठीक है, थोड़ा सा वो आगे से जरा हमें कन्विंस कर लें कि भाई इसकी वजह से आपके बच्चों के ऊपर ये असर होगा, वो असर होगा, तो हम कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं चाहते। लेकिन घर के अंदर टीवी रखा हुआ है और टीवी जो है वो बच्चों के सामने भी चलाते हैं, अब खुद भी गुनाहगार हो रहे होते हैं और बच्चों के जहनों के अंदर इन चीजों को जो है वो पुख्ता भी कर रहे होते हैं। अब वो बच्चा जो है वो उस तरीके से फिजिकली मेच्योर भी नहीं होता और मेंटली मेच्योर भी नहीं होता और रूहानी तौर पर भी मेच्योर नहीं होता, किसी तरीके से उसके अंदर मेच्योरिटी नहीं होती है। तो वो जब ये चीजें देखता है तो उसके अंदर जो है वो इसको किसी तरीके से इंप्लीमेंट करने की एक डिजायर पैदा होती है, और वो उसको कैसे कैसे इंप्लीमेंट करेगा, फिर उसने ऐसे ही करना है जैसे जो कि उसके बस में बात आएगी। यंग एज मीन्स बिफोर दे हिट प्यूबर्टी, यंग एज जो होती है ना वो सिर्फ प्यूबर्टी से पहले नहीं होती, प्यूबर्टी का मतलब उर्दू में बलूगत होता है, जिसके और बलूगत और प्यूबर्टी का वो का जो एज होती है उसके बाद शरीयत के अहकाम उस बच्चे के ऊपर लग जाते हैं, यानी नमाज फर्ज हो जाती है, रोजा फर्ज हो जाता है, ठीक है, और इस तरह के जितने भी शरीय अहकाम होते हैं वो उसके ऊपर नाफिज हो जाते हैं। तो यंग एज से मुराद यहाँ पर जो है वो सिर्फ बिलो प्यूबर्टी नहीं है, बल्कि इवन अबव प्यूबर्टी भी एक सर्टेन टाइम तक बच्चा जो होता है ना वो मेंटली मेच्योर नहीं होता है, इंसान मेंटली मेच्योर नहीं होता। इसकी एक मिसाल आपके सामने खाली रिसेंटली जो मेरे सामने आई वो आप में से चंद ने हो सकता है वो बयान सुना हो, जिसमें साजिश ने अमेरिका के अंदर जो स्कूल शूटिंग्स होती हैं, ठीक है, अमेरिका के अंदर जो स्कूल शूटिंग्स होती हैं जिसके अंदर एक बच्चा उसी स्कूल का उठता है और किसी सेमी ऑटोमेटिक राइफल से या पिस्टल से वो अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों को कत्ल करना शुरू कर देता है, शूट करना शुरू कर देता है, और फिर कभी टीचर्स को भी शूट कर देता है, कभी प्रिंसिपल को भी शूट कर देता है, और इस तरह की शूटिंग्स जो है वो बहुत ज्यादा वहां पर। हत्ता के जब इस आदिज ने बयान किया चंद हफ्ते पहले तो उस वक्त ये कहा था कि उस वक्त ये कहा था बयान में कि पता नहीं नेक्स्ट इवेंट कब होने वाला है, और बिल्कुल हुआ ये नेक्स्ट इवेंट। चंद हफ्ते गुजरे हैं, 2-3 हफ्ते गुजरे और टेक्सास के अंदर एक और इवेंट हो गया, एक बच्चा वही उसी स्कूल का बच्चा उठा और उसने उठा करके 10 लोगों को अपने स्कूल के अंदर अपनी गन से मार दिया, ठीक है। तो इसके ऊपर ना वहां पे बड़ी जो है वो बातें चल रही हैं, बड़ी जो है वो लोगों के ओपिनियंस आ रहे हैं कि गन्स के ऊपर पाबंदी लगाओ, ये करो वो करो, राइट। तो उसके ओपिनियंस में पढ़ रहा था तो एक ओपिनियन एक बच्ची ने किसी ने लिखा था जिसमें उसने बताया था, उस बच्ची ने बताया था कि मैंने ना साइकैट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट वगैरह से जो बात करी तो या कहीं मैंने पढ़ा किसी साइकैट्रिस्ट का कोई मजमून था तो उसने मुझे उस मजमून से मुझे पता लगा कि जो 18 ईयर्स के बच्चे होते हैं ना, 18 ईयर्स के बच्चे उनके अंदर क्या था, मुझे अल्फाज एग्जैक्टली याद नहीं है, कि ब्रेन के अंदर जो नियोकॉर्टेक्स का जो मुकाम होता है तो जिसके अंदर के कुछ डिसीजंस होते हैं, मुझे एग्जैक्टली वो टर्म याद नहीं है, लेकिन वो इस तरह से मेच्योर नहीं होता कि उस एज का जो बच्चा है ना वो वेपन्स को सही तरीके से इस्तेमाल कर सके, वेपन्स को सही इस्तेमाल कर सके, उसका ब्रेन ही इतना डेवलप नहीं हुआ होता, ठीक है। तो देखें इवन दीज नॉन मुस्लिम्स ये जो कि यानी हर किस्म की पाबंदियों से अपने आप आजाद समझते हैं, इनकी साइंस जो है ना जब इंसान के बदन को जाके स्टडी करती है तो वो भी इसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि हाँ भाई एक इस एज के बच्चे की इतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाती है कि वो इस किस्म की जो इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट और क्रिटिकल किस्म की जो चीजें होती हैं या क्रिटिकल किस्म की सिचुएशंस होती हैं उनके अंदर सही फैसला कर सके, ठीक है। तो इस वजह से जब उसके ऊपर जज्बातियत तारी होती है, किसी वजह से जो है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो अब उसका जो रिएक्शन होता है ना वो इतना डेंजरस रिएक्शन होता है। अगर उसके पास फिजिकल वेपन्स हैं तो वो फिजिकल वेपन से लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, अगर उसके पास फिजिकल वेपन नहीं है, किसी और किस्म का वेपन है, जैसे जुबान का वेपन है, जैसे किसी और किस्म का उसके पास के बदन के अंदर कोई चीज है, तो उसके जरिए से फिर वो नुकसान दूसरों को भी पहुंचाना शुरू करता है, अपने आप को भी पहुंचाना शुरू करता है। तो इस पूरे बहस का जो असल मकसूद था वो ये था कि ये जो एक्सपोजर है ना, सो कॉल्ड सेक्सुअल एजुकेशन का जो एक्सपोजर है, दिस एक्सपोजर इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी सोल्यूशन, दिस इज नो सोल्यूशन। अगर ये सोल्यूशन होता, इसके ऊपर एक और अखली दलील क्या है कि अगर ये सोल्यूशन होता तो जितने वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन तमाम के अंदर तो ये एजुकेशन बहुत पहले से दे दी जाती है। पता नहीं क्या क्या नहीं है वहां पर, जो वीडियोस के जरिए से पब्लिक स्कूल के अंदर, हाई स्कूल्स के अंदर बच्चों को दिखाया जाता है, ठीक है, सेफ सेक्स और ये और वो, पता नहीं क्या क्या, कितनी ज्यादा अवेयरनेस, सो कॉल्ड अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। तो जितनी अवेयरनेस क्रिएट हो रही है उससे क्या हो रहा है, उस माशरे के अंदर कोई ये चीजें कम हो रही हैं बल्कि और ज्यादा बढ़ रही है, और जो है प्रेगनेंसी का जो एज है वो बच्चियों के अंदर और कम होती चली जा रही है, ठीक है। 9 साल की बच्ची जो है प्रेग्नेंट हो रही होती है, 8 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो रही होती है, 13 साल की बच्ची जो होती है उसकी जो साथ साथ जो जो उसकी बेटी होती है वो उससे 1-2 साल छोटी होती है, मतलब 1-2 साल से छोटी तो नहीं होगी लेकिन माएं बनी हुई हैं, 13-13 साल की बच्चियां, 18-18 साल की बच्चियां, 16-17 साल की बच्चियां बगैर शादी के, हत्ता के ऐसे भी होती हैं यंग बच्चियां होती हैं कि जिनका के यानी पता नहीं कितने मर्द उनके साथ जो है अपनी शहवत को पूरी कर चुके होते हैं, और उनकी उम्र जो होती है वो 18-19 साल होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। यानी लुटी पुटी, हर तरह से लुटी पुटी औरतें जो हैं वो यूरोप और अमेरिका के अंदर मौजूद हैं इस जिना के गुनाह की वजह से। तो अल्लाह ताला ने एक दूसरा तस्वर पेश किया, अल्लाह ताला चाहते हैं, देखिए अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाते हैं, जो आयत थी इस वाक़े इसके अंदर आयत नंबर 23, अल्लाह ताला ईमान वालियां जो पाक दामन होती हैं उनकी सिफात बयान कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग कि जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग जो कि ऐब लगाते हैं मुहसनात के ऊपर, पाक दामन औरतें, मुहसनात, मुहसनात की दूसरी सिफात क्या बयान फरमाई, गाफिलात। यहाँ पे गाफिलात का क्या मतलब है, अल्लाह के जिक्र से गाफिल यहाँ मुराद नहीं है, अल्लाह के जिक्र से गाफिल मुराद नहीं है गाफिलात, हालांकि लफ्जी तर्जुमे में ऐसे ही लगता है कि अल्लाह के जिक्र से गाफिल को जो है वो यानी मर्द को गाफिल कहते हैं और औरत को गाफिला कहते हैं, और गाफिला की जो जमा होती है वो गाफिलात होती है। यहाँ पर गाफिलात से क्या मुराद है कि ये वो औरतें होती हैं कि जिनको गुनाहों का पता ही नहीं होता, जिनको के एक्सपोजर ही नहीं होता, इतनी पाक दामन होती हैं, निगाहें भी इनकी पाक होती हैं, इनके कान भी पाक होते हैं, इनकी सोचें भी पाक होती हैं। ये वो औरतें होती हैं जो कि अल्लाह ताला की महबूबा होती हैं, महबूब बंदियां होती हैं अल्लाह ताला की, राइट। तो अल गाफिलात का यहाँ पे जो इस्तेमाल अल्लाह ताला ने किया है ना, ये हमारे लिए आई ओपनर है कि ये सेक्स एजुकेशन अपने बच्चों को देख करके आप उनकी इस गफलत को तोड़ रहे होते हैं, इससे उनको कोई फायदा नहीं हो रहा था। आपको चाहिए कि आप उनके लिए ऐसा माहौल क्रिएट करें, आप उनको जो है वो अल्लाह ताला का 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 ईमान अता फरमाएं, अल्लाह और आखरत का ईमान जो है वो उनको सिखाएं, उनको गुनाहों की नफरत उनके अंदर पैदा करने की कोशिश करें, और उनको ऐसे माहौल से बचाएं जहां पर के जो को एजुकेशन होती है और औरतों और मर्दों का इख्तलात होता है, लड़के लड़कियों का इख्तलात होता है, चाहे वो खानदानों के अंदर हो, चाहे वो माहौल मुआशरे के अंदर हो, चाहे वो बाजारों के अंदर हो, चाहे कहीं भी हो, आप उनको इस इख्तलात से रोकने की तदाबीर करें, खाली डंडा लेकर के उनको रोके नहीं बल्कि उनको समझाएं कि बच्चा ये तुम्हारे हक में कितना बुरा है और तुम जो है वो इससे अपने आप को रोको, क्योंकि अल्लाह नाराज होते हैं इस बात से, अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं है। तो सूरह नूर की तालीम सिर्फ बड़ी उम्र की औरतों को नहीं बल्कि छोटी उम्र की बच्चियों को भी उनके लेवल पे जाकर के सूरह नूर की तालीम दे सकते हैं। आप पूछ रहे हैं, बच्चे जब रिश्तेदारों के घर जाते हैं तो टीवी एंड वीडियो गेम से कैसे बचाएं? आप उनके दिल में ऐसा ईमान पैदा करें कि वो अपनी निगाहों की हिफाजत करें, चाहे वो कहीं भी जाएं, रिश्तेदारों के घर जाएं, बाजार में आपके साथ जाएं, अपने स्कूल कॉलेज में जाएं, जहां भी जाएं उनको पता हो कि मैं जब निगाह का अपनी आंखों का गलत इस्तेमाल करूंगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत को सब कुछ पता है, अल्लाह ताला से मैं कैसे कोई मोहब्बत वाली बात एक्सपेक्ट कर सकता हूं अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी में अपनी निगाहों को इस्तेमाल करूंगा। ईमान के बगैर उनको कोई चीज नहीं बचा सकती। रिश्तेदारों के घर जाएंगे आप उनको नहीं देख सकते, उल्टा जो है वो रिश्तेदार जो है वो उनको पकड़ पकड़ करके बिठाएंगे इन कामों के अंदर। तो अगर बच्चा खुद इसको रेजिस्ट कर सकता है तब वो इससे बचेगा, आप तो इससे रेजिस्ट जो है वो रिश्तेदारों के सामने वैसे भी ज्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा तो करना चाहिए रिश्तेदारों की जो 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 उनकी अप्रूवल जो है ना उसके पीछे हम अल्लाह ताला की तरफ कहीं डिसअप्रूवल के मुर्तकिब ना हो जाएं। تو یہ خیال رکھنا چاہیے, ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا ہے نا, تو اللہ کو اس کے مقام پہ رکھنا ہے اور رشتہ داروں کو ان کے مقام پہ رکھنا ہے. تو رشتہ داری کو قائم رکھنے کی خاطر اللہ کو ناراض نہیں کرنا, اپنی نسلوں کو تباہ نہیں کرنا ہے. ایک اور سوال تھا کہ جب بچے اس طرح کے ماحول میں پرورش پاتے ہیں اور یہ گند بچوں کی سوچ میں آ جاتی ہے تو اس سے کیسے نجات پائیں یا نکلیں. جب یہ سوچ ایک دفعہ آ جاتی ہے, جیسے کہ انفارچونیٹلی تقریباً ہم سب جو کہ دنیاوی ماحول میں پلے بڑھے ہیں تو سب کے ذہنوں میں اس طرح کی سوچیں اور اس طرح کے خیالات, امیجز, حتیٰ کہ آوازیں, گانوں کی آوازیں, فلموں کے جو سینز ہوتے ہیں, سارے کے سارے دماغوں کے اندر رچ بس جاتے ہیں. تو اس کو نکالنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ والوں سے اپنا تعلق بنانا, ڈاکٹروں کے پاس جانا جو اللہ والے ہوتے ہیں, جن کو کہ اللہ والے کہا جاتا ہے اردو میں, اور ویسے وہ روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں, مشائخ ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کے پاس جانا اور ان سے اللہ کا ذکر سیکھ کر کے ایسے ذکر کرنا کہ ہمارے اندر کی گندگیاں جو ہیں نا, جو روحانی بیماریاں ہیں, علائشیں ہیں, وہ دور ہو جائیں. اور اللہ کے ذکر کے اندر اتنی طاقت ہے, اتنی اچھی وہ میڈیسن ہے کہ اس سے یہ امیجز جو ہے نا وہ انسان کے ذہن سے الٹیمیٹلی نکل جاتے ہیں. شروع میں جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہو جاتے ہیں, نکلتے نہیں ہیں لیکن انڈر کنٹرول ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر وہ آپ کو ڈرائیو نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. بے شک آپ کے اندر موجود ہیں لیکن وہ آپ کے اعمال کو ڈرائیو نہیں کر پاتے, ان کا اثر جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اگر آپ ذکر کرتے رہیں, ان کی باتیں سنتے رہیں, ان کی باتوں پہ نصیحتوں پہ عمل کرتے رہیں, تو یہ چیزیں پھر بالکل ذہن سے نکل جاتی ہیں. اس طریقے سے انسان پاکیزہ ہو جاتا ہے. دیکھیں صحابہ کرام جو تھے ان کے ماحول کے اندر زنا بہت عام تھا, بہت زیادہ عام تھا. اتنا معاملہ تھا کہ ایک عورت جو ہے اس کے یہاں کوئی بچہ ہوتا تھا اور پھر 15 مرد تقریباً, یعنی کتابوں میں لکھا ہے کہ 15 مردوں کو وہ جمع کرتی تھی, ٹھیک ہے. چاروں طرف اس کے 15 مرد جو ہے وہ بیٹھتے تھے اور وہ عورت جو ہے وہ کہتی تھی کہ اچھا یہ بچہ جو ہے نا یہ اس مرد کا ہے, ٹھیک ہے. جس کے اوپر اس کا دل چاہتا تھا وہ انگلی رکھ دیتی تھی, کوئی کنفرم, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچہ کس کا ہے. اور انفارچونیٹلی آج کے دور کے اندر ہمارے مشاہد بتا رہے ہیں کہ اس دور میں بھی ایسا معاملہ آ گیا ہے کہ گھروں کے اندر بیویاں ہوتی ہیں, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کا بچہ جو ہے وہ گھر کے کس فرد کا بچہ ہے. یہ اس وقت ہم اس حالت سے گزر رہے ہیں, اور امریکہ یورپ میں خالی نہیں, وہاں تو گزر ہی رہے ہیں. اس حالت سے ہم پاکستان جیسے ملک میں گزر رہے ہیں, یہ نوبت آئی ہوئی ہے ہماری, یہ اس نہج کو یہ معاملہ پہنچ چکا ہے. Early marriage the solution for prevention as proposed by some scholars. Early marriage جو ہے نا یہ ظاہر ہے اس کے اندر کوئی specific age تو نہیں ہے نا کہ جی early marriage means 17 سال کی marriage, early marriage means 19 years کی marriage, ٹھیک ہے. تو early marriage is definitely a solution, لیکن what is an early marriage, ٹھیک ہے, کہ ارلی میرج جو ہے وہ کس سال میں ہوتی ہے. تو یہ جو ہے نا وہ ہر گھرانے اور ہر یعنی ہر کیس کے حساب سے یہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. تو کسی کے لیے ارلی میرج 17 سال کی عمر بھی ہو سکتی ہے, کسی کے لیے ارلی میرج 19 سال کی عمر بھی ہو سکتی ہے, کسی کے لیے 22 سال کی عمر بھی ارلی میرج ہو سکتی ہے. تو اٹ ڈپینڈز آن یور سچویشن. تو اس وجہ سے اس معاملے کے اندر میاں بیوی کو, یعنی ماں باپ جو ہے ان کو آپس میں مشورہ اور اپنے بزرگوں سے بڑوں سے جو ہے وہ مشورے کے ساتھ طے کرنا چاہیے کہ جی ان کے ماحول میں بچوں کی جو ہے وہ شادی جو ہے وہ کس عمر میں کر دینی زیادہ مناسب ہے, ٹھیک ہے. اور لیٹ میرج جو ہے نا وہ 30s میں جو ہوتی ہے نا, جو یعنی 25 سے اوپر, ٹھیک ہے, 25 سے اوپر جو ہے وہ لیٹ کے زمرے میں جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. اور 30 سے اوپر تو ڈیفینیٹلی لیٹ کے زمرے میں جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے چونکہ جب یہ جیسے پیچھے سوال کیا تھا کہ پیوبرٹی سے جو ہے نا وہ یہ چیزیں انسان کے جسم میں آ جاتی ہیں, تو اب اس کے بعد جو 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 لوگ ڈیل کرتے ہیں اس قسم کی سچویشن سے, تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ آج کل کے گندے ماحول میں بھی اگر اس کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا دینداری والا ماحول رکھا جائے, اس کو یعنی مجالس میں آتا رہے اور نیکی کی باتیں سنتا رہے, تو وہ 6-7-8 سال جو ہے نا وہ فائٹ آف کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو ماحول کی وجہ سے سڑکوں کے اوپر اور کالجوں اسکولوں کے اندر جو ماحول بنا ہوا ہے, تو اس کی وجہ سے جو اس کے اوپر جو نیگیٹو انفلوئنسز آتے ہیں, تو ان انفلوئنسز سے نا بچہ 5-6-7-8 سال فائٹ آف کر سکتا ہے. उससे ज्यादा फाइट करना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है, ठीक है। तो उससे ज्यादा डिले करना जो है वो फिर लेट मैरिज के अंदर आ सकता है। बच्चे कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं कि हमारे पास ये नहीं वो नहीं है, ऐसे में क्या किया जाए, कैसे समझाया जाए। उसके लिए आपको उनकी जहन साजी करनी होती है, दिल साजी करनी होती है कि सिर्फ यानी हैविंग मोर इज नॉट गुड, कि मेरे पास ज्यादा चीजें हो, ठीक है, द मोर द बेटर, ठीक है। ये जो स्लोगन है ना, ये स्लोगन जो है वो नॉन मुस्लिम मुआशरे का है, ये काफिरों का स्लोगन है। तो हम जब अपने बच्चों की ईमानी तरबियत करते हैं तो उसके अंदर हम उनको ये बात भी सिखाते हैं, सिर्फ ये नहीं कि ये अल्लाह के रसूल आए थे और किताब ये है और अल्लाह ये, ठीक है, नहीं, इसके अंदर और भी चीजें हैं। हिकमत सीखनी होती है, नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें पढ़ें, मशायख की खुसूसन इस मामले के ऊपर जो किताबें हैं, जो बयानात हैं, उनको हमें सुनना है ताकि हमारे पास ये हमारी हमारी एक्सपैंड हो ये सोच कि ईमानी तरबियत का मतलब और क्या होता है। ईमानी की तरबियत का मतलब ये भी होता है कि जो यानी इस दुनिया के अंदर जो अपनी ख्वाहिशात पूरी करना है, ये जो है वो यानी खुशी का जरिया नहीं है, ठीक है। खुशी डज नॉट मीन द मोर यू हैव द बेटर, ठीक है, द बिगर द बेटर, द मोर द बेटर, ये खुशी की का मतलब नहीं है। असल चीज होती है वो खुश रहना, असल चीज होती है एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, एक दूसरे की मदद करना, जैसे कि आपने सुना होगा शेयरिंग इज केयरिंग। तो ये अक्सर माए जो है अपने बच्चों को सिखाती हैं, तो शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग इज जस्ट लाइक वन ऑफ दोस थिंग्स, जो कि बच्चे की रूहानी और यानी तरबियत के लिए इस किस्म की बातें हमें उनको समझानी पड़ती हैं। तो उनको ना आपको ऐसी चीजों में लगाना होता है कि जिन चीजों में उनका अच्छा वक्त गुजर जाए और उनके ऊपर नेगेटिव असरात भी ना हो। इसके लिए आपको अच्छी कंपनी को तलाश करना होगा, ठीक है ना, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, उनके साथ जो है वो अपना वक्त गुजारना, ठीक है। नेक लोग जो होते हैं उनके आपको थोड़ा सा मेहनत करेंगी तो ऐसे नेक लोग मिल जाएंगे, और ऐसे नेक लोगों के जो बच्चे होते हैं तो उनकी उन बच्चे वो बच्चे जो होते हैं ना उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह जहन साजी हुई हुई होती है, तो आपके बच्चों को फ्रेंड्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपने घर के अंदर ऐसी चीजें लेकर के आए कि जिन चीजों से उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग हो, ऐसे टॉयज अवेलेबल हैं, ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जिनसे बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग हो। सिर्फ जो है वो बच्चे को एक आईफोन पकड़ा देना, बच्चे को जो है वो सोनी का प्ले स्टेशन पकड़ा देना, ठीक है, ये उसके लिए यानी डेडली होता है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए हमें जरा नेकों के साथ ताल्लुक बनाना होता है, थोड़ा सा जो है वो यानी सोचना, सोच विचार करनी होती है, और सबसे बढ़कर हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी होती है, सबसे बढ़कर अल्लाह से दुआ करनी होती है। पर अल्लाह ताला ना हमारे जहन को खोलते हैं कि भाई व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स जो कि हम अपने बच्चों को दे सकें। तो टीवी और इस तरह के खुसूसन मोबाइल फोन तो बच्चों को हरगिज ना दें। अगर कोई बहुत जरूरत है भी कि भाई उनको आपको इतला देनी है कि अच्छा अब आप आकर के मुझे यहां से पिक कर लें, स्कूल से पिक कर लें, या कोई, तो आप उनको स्मार्टफोन क्यों दे रहे हैं? उसके लिए एक रेगुलर फोन दे दें जिसके अंदर ये सारी एप्स वगैरह ना हो, जिनसे कि वो इंटरनेट पे कनेक्ट होकर के फिर जो चाहे करें, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं। तो वो इमेच्योर एज में है, उनको एटम बम ना हाथ में दें उनके, ठीक है, एटम बम उनके हाथ में ना दें कि वो अपने आप को भी बर्बाद करें और दूसरों को भी बर्बाद करें इससे, ठीक है। शेख के साथ मशवरा करके अपनी इसलाह करना इज कंपैरेटिवली इजियर फॉर मेन एज दे कैन मीट देयर शेख एंड बी इन कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्ट विद हिम, बट इजंट इट डिफिकल्ट फॉर वुमेन? जी, इसके लिए एक तो ये कि जो पर्दे के साथ कम्युनिकेशन के जराए अल्लाह ताला ने आसान किए हैं ना, ये व्हाट्सएप जो है इसको हम इस काम के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना, ईमेल है, व्हाट्सएप है, इवन फोन पे अगर जरूरत पड़े, ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाए कि फोन पे बात करनी पड़े, तो ऐसे भी मशायख से बात कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो नेक औरतें होती हैं, ठीक है, जो कि मशायख ही की या उलमा की सीनियर स्टूडेंट्स होती हैं, उन्होंने दीन का इल्म हासिल किया होता है, उन्होंने अल्लाह ताला का जिक्र करके एक सर्टन लेवल तक पहुंच चुकी होती हैं, तो औरतों को फिर उनसे राबते में रहना होता है, ठीक है। करना यही चाहिए कि शेख के मशवरे से किसी ऐसी औरत के साथ राबते में रहे, अगर शेख की अपनी अहलिया जो है वो इस दीन के काम के अंदर लगी हुई है तो शेख की अहलिया के साथ राबते में रहे, ठीक है। तो जिस तरह से मर्द है ना, तो मर्दों को जो ये अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है ना, तो साथ साथ ये बात भी याद रखें कि ये जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल मर्दों को ज्यादा होती है ना, ये अल्लाह ने अवेलेबल करी है, और اور اللہ نے کیوں اویلیبل کری ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر اس کی ضرورت زیادہ ہے، مردوں کو اس کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. عورتوں کو نا اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ ان کو اس فزیکل کانٹیکٹ کی اور فزیکل صحبت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو آپ کی نیچر اللہ نے ایسے بنائی ہے، تو جیسی اللہ نے نیچر بنائی ہے اس کے حساب سے ہی آپ کی اصلاح ہوتی ہے عورتوں کی. ٹھیک ہے، تو آپ کی اصلاح جو ہے وہ خط و کتابت کے ذریعے سے، جو کہ آج کل واٹس ایپ وغیرہ بھی خط و کتابت میں آ جاتے ہیں، اور جو نیک عورتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے عورتوں کی اصلاح ہو جاتی ہے. اسپیشلی موبائل اینڈ ٹیبز، ایز ایوری ون فیملی ہیز موبائلز اینڈ ٹیبز، ایز وی کین ناٹ گیو دیز تھنگز ٹو آور کڈز بیکمز اے ڈفرنس ان فیملی. سو واٹ بھائی، ڈفرنس ہی تو بنانا ہے آپ نے، یہی تو مسئلہ ہے. ہمیں جو بلینڈ ان کرنے کا شوق ہے نا، کہ ہم جو ہے وہ گناہوں میں بلینڈ ان ہو جائیں، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ جی ہم اپنی فیملی کے ساتھ بلینڈ ان ہو رہے ہیں. ہم فیملی کے ساتھ بلینڈ ان نہیں ہو رہے ہیں، ہم گناہوں کے ساتھ بلینڈ ان ہو رہے ہیں. بلینڈر سمجھتے ہیں نا، بلینڈر تو ہر عورت کو پتا ہے بلینڈر کیا کرتا ہے، ہر چیز کو مکس کر دیتا ہے آپس میں. ٹھیک ہے، تو گناہوں میں بلینڈ ان ہونا یہ تو بربادی ہے ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو بھائی ہم نے تو ڈفرنٹ بننا ہے نا، ہم نے تو گناہوں سے اور گناہ کرنے والوں سے اپنے اور اپنے اولادوں کو ڈفرنٹ بنانا ہے. یہی تو مقصد ہے سارا کا سارا دین سمجھنے کا، ورنہ تو بلینڈ ان ہونے سے تو پھر آپ کسی قابل نہیں رہتے. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو پڑھ کے دیکھیں، کل جو تفسیر کی کلاس کے اندر بات ہوئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو، اپنے باپ کو، آزر جو باپ تھا یا چچا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہا کہ تمہاری قوم کا میں فرد نہیں ہوں، میں الگ ہوں، تمہاری قوم جو شرک کے اندر مبتلا ہے وہ الگ ہے. حالانکہ اسی قوم کا فرد تھے، اسی فیملی کے رکن تھے، لیکن کفر اور شرک اور ایمان اور اسلام جو ہے ان دونوں کے درمیان فرق کر دیا، میں الگ ہوں، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں. تو اپنے آپ کو ڈفرنٹ بنانا ہوتا ہے اس کام کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یو اسٹارٹ لوکنگ ڈاؤن اپون پیپل، ٹھیک ہے، کہ وہ تو گناہگار ہیں اور وہ تو جہنمی ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں. نہیں، ان کے لیے دعا کرنا ہے، ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنا ہے، لیکن ان کے گناہ میں شامل ہونے کو کسی نے اجازت نہیں دی ہے. ٹھیک ہے، ذرا اس دوسرے کلاس میں بھی میسجز دیکھ لوں کہ حضرت گیمز کے لیے موبائل مانگتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، کیسے روکیں، کیا کریں؟ نہیں، وہ کل کو آپ سے چھری مانگیں گے کام کرنے کے لیے، تو آپ دے دیں گے ان کو؟ نہیں دیں گے نا. اسی طریقے سے جو ہے وہ گیمز جو ہے نا وہ بھی دے دینے نہیں ہوتے ہیں، اس کے لیے حلال گیمز کے آلٹرنیٹو ان کو پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں. ذرا سا اس کے لیے اپنے ذرا سوچ وچار کرنی ہوتی ہے، اپنے آپ کو فوکس کرنا ہوتا ہے، تاکہ اس طرح کے آپشنز بھی ہمارے سامنے جو موجود ہیں تو ان آپشنز کو ہم استعمال کریں. ٹھیک ہے، خالی بچوں کے پریشر میں آ کر کے نا ماں باپ کو نہیں چلنا چاہیے، اس طرح سے وہ بہت نقصان ہوتا ہے. کچھ اور پرائیویٹ چیٹ میں ایک سوال کیا ہے کہ لائک اف وی ڈونٹ ٹیل آور چلڈرن اباؤٹ دس سٹف دے ول گیٹ ٹو نو فرام اسکول. نہیں، یہ کوئی حل نہیں ہے اس کا کہ سنس دے ول گیٹ ٹو نو فرام اسکول اس وجہ سے وی ہیو ٹو ٹیل دیم ٹیل اٹ آور سیلف. یہ جو سلوگن ہے نا، یہ کافروں کا سلوگن ہے کہ دے ول گیٹ ٹو نو آئی ایم اے رونگر رونگر، پتا نہیں کیا لکھ رہی ہیں آپ. خیر، یہ جو ایک سوچ ہے نا کہ جی ان کو سب کچھ خود بتا دو، کل کو ان کو وہاں سے پتا لگے گا تو کیا ہوگا، تو بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جیسے وہاں سے پتا لگے گا ویسے ہی آپ بتائیں. طریقہ ہوتا ہے اس کا، اس کے لیے حیا کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. حیا کے سٹائل بات کرنے کا بچوں کے ساتھ وہ ڈفرنٹ ہوتا ہے، اور کافروں کا سٹائل بات کرنے کا بالکل ڈفرنٹ ہوتا ہے. تو جب بچے میچیور ہو جاتے ہیں فزیکلی، تو بچی کو جو ماں بتاتی ہے وہ اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، وہ بتانا ہوتا ہے ماں کو. اسی طریقے سے بچے کو جو ہے وہ باپ کو بتانا ہوتا ہے، لیکن میچیور ہونے سے پہلے جو بتانے والا معاملہ ہے نا، یہ یعنی بھائی اس کے لیے تھوڑا سا اور گراؤنڈ ورک کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو آگ میں ڈالیں، ٹھیک ہے، پہلے آگ میں ڈالیں، پھینکے پہلے آگ میں، اور اس کے بعد پھر یہ کہیں کہ جی چونکہ اس نے آگ میں جلنا ہی ہے تو چلو میں اس کو گھر میں پہلے جلا دیتا ہوں، تاکہ اس کو ذرا اندازہ ہو جائے کہ جی جلنے سے کیسی تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آگ میں تو پھینکنا ضروری ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں گھر میں بھی تھوڑا اس کو آگ میں پھینک دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو بھائی آپ آگ میں پھینکتے کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ ایسا اس کو پہلے سے کیوں نہیں تیار کرتے کہ یا تو آپ اس کو آگ میں سرے سے پھینکیں ہی نہ، ٹھیک ہے، یا یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس گناہوں کی آگ میں آپ کو پھینکنا ہے، تو کم از کم اس کو जो जो ऐसा ड्रेस होता है ना जिसमें कि फायर क्या होते हैं वो जो जो ऐसे फायरमैन जो पहनते हैं इस किस्म का ड्रेस कि जिसके ऊपर आग असर नहीं करती है, ठीक है, तो कम से कम ऐसा ड्रेस तो पहना है ना उसको, ठीक है, आग में फेंकना ही है तो कम से कम ऐसा ड्रेस तो बना करके फेंके ना। तो इसी को कह रहे हैं ईमानी तरबियत करके बच्चों को ऐसे माहौल में भेजें, राइट, अगर भेजना ही है तो ईमानी तरबियत करें उनकी, राइट। तरबियत नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर यही होगा कि वो गुनाहों की जिंदगी में पहले पड़ेंगे, फिर वो अपने आप को भी अजियत पहुंचाएंगे, दूसरों को भी अजियत पहुंचाएंगे, उनकी जिंदगी खराब होगी, ठीक है। उसके बाद अल्लाह ताला ने उनके साथ मेहरबानी फरमाई, मतलब यही कि वो कोई उनको दुआ लग गई या कभी उन्होंने तौबा कर ली, तो फिर 30, 40, 50 साल की उम्र में जाकर के वो तौबा करेंगे, फिर उनकी सारी जिंदगी गुजर चुकी होगी गुनाहों के अंदर, फिर जो है वो अफसोस करेंगे, हो सकता है माँ बाप को गालियां भी देना शुरू कर दें कि माँ बाप ने तो मुझे बचपन में कुछ नहीं बताया, माँ बाप ने मेरे साथ ये किया, माँ बाप ने मेरे साथ वो किया, राइट। उसके बाद तौबा करेंगे, उसके बाद जो है वो जन्नत में चले जाएंगे, राइट। लेकिन क्यों डालते हैं इस तरीके से, पहले से तरबियत क्यों नहीं करते, पहले से अपने आप को क्यों नहीं जो है वो थोड़ा सा रोकते हैं कि जी हम अपनी ख्वाहिशात को जरा दबाएं, ठीक है, हम जो है वो अपनी हर जो चाहते हैं कि हम ऐसे हों और हमारे बच्चे ऐसे हों, राइट, उसको रोकें और ये देखें कि अल्लाह क्या चाहता है कि मैं ऐसा हूं और मेरे मेरे बच्चे ऐसे हों, अल्लाह क्या चाहता है, अल्लाह को अपनी जिंदगी के अंदर प्रायोरिटी दें, ठीक है। तो ये तरीका नहीं है जो काफिरों वाला तरीका है ना कि पहले माँ को जो है वो मारो और उसके बाद माँ को जो है वो जलील और रुसवा करो, माँ को जो है वो छोड़ दो और फिर साल के अंदर ना एक मदर्स डे मना लो, राइट। यानी पहले जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करो और उस प्रॉब्लम का एक बेवकूफी का हल तलाश करो मदर्स डे के जरिए से, राइट, या बर्थ डे के जरिए से जो है वो अपने शौहर को पहले सारी जिंदगी जो है वो जलील करो अपनी बीवी को, राइट, बीवी को शौहर को जलील करो और उसके बाद जो है ना वो वेडिंग एनिवर्सरी जरूर मनाना, राइट। वेडिंग एनिवर्सरी के जरिए से है ना वो हमारी मोहब्बत जो है वो माशाल्लाह, तो भाई सारा साल क्यों नहीं आप वेडिंग एनिवर्सरी मनाते, सारा साल क्यों नहीं तमीज के साथ रहते अपने शौहर के साथ अपनी बीवी के साथ, राइट। तो ये काफिरों वाला तरीका है, ठीक है। इसी वजह से ना बेशक हलाल हो वेडिंग एनिवर्सरी मनाना, बेशक हलाल है, राइट, बर्थडे मनाना जो है वो हलाल हो गया, ठीक है, लेकिन ये तरीका नहीं है कि एक दिन जो है वो बंदे को जो है वो उठाओ और सारा दिन जो है वो उसको गिराओ, तो ये तरीका नहीं है हमारे दीन का कि पहले जो है वो मुसीबत क्रिएट करो आग में फेंक करके और उसके बाद कहो कि नहीं जी इस आग से बचने के लिए जो है वो घर के अंदर जो है ना इन चीजों को जो है वो डिस्कस करना चाहिए, ठीक है भाई। एक तरीका होता है, एक तमीज होती है, एक एक वक्त होता है इन चीजों को डिस्कस करने का, उससे पहले डिस्कस करना जो है वो अल्लाह के निजाम के खिलाफ जाना होगा, ठीक है, और अल्लाह के खिलाफ निजाम के खिलाफ जाने से ना आप खैर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। ये ईमान है, ये बेसिक्स है ईमान की, ये बेसिक्स है ईमान की, और हम जिस रमजान मुबारक के महीने से गुजर रहे हैं और माशाल्लाह इतनी सारी इबादतें कर रहे हैं, इतनी सारी तिलावतें कर रहे हैं, ये सब आमाल हैं, ठीक है। बेसिक्स ही ना हो ईमान की तो आमाल से क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा हमें आमाल से, वही होगा 30 दिन गुजरेंगे और फिर सारी की सारी जिंदगी बैक टू एबनॉर्मल, बैक टू एबनॉर्मल, बैक टू नॉर्मल तो नहीं होती, बैक टू एबनॉर्मल हो जाती है 30 दिन के बाद, क्योंकि ईमान नहीं होता ना, अमाल हो रहे होते हैं खाली, और अमाल जो होते हैं वो 30 दिन के बाद खत्म हो जाते हैं, वही बैक टू स्क्वायर वन पहुंच जाते हैं सारे के सारे हम, ठीक है ना। तो अल्लाह के निजाम को अल्टीमेट रियलिटी समझना और दुनिया के अंदर जो चीजें हैं काफिरों की लाई हुई हों, फासिकों की, फाजरों की लाई हुई हों, उनको जो है वो झूठा समझना, उनको गलत समझना, ये तो ईमान की बेसिक्स हैं ये बिल्कुल, ठीक है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ईमान को समझने की, अपने जिंदगी में पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ हम आज की क्लास खत्म करते हैं, कल इंशाल्लाह यहीं से शुरू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।